एक दिन जब वो कॉलेज के घर वापस जा रही थी तो मौके का फायदा उठाकर मैंने उसका पीछा किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर वो चालाक निकली। उसने मुझे घायल कर दिया और पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी। मेरे पिता का उस समय अच्छा खासा नाम था, समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। अपने नाम और इज्जत को बचाने के लिए मेरे पिताजी ने भी कानून का ही सहारा लिया और मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए कहा। उस सीमा की वजह से मुझे पूरा एक हफ्ता जेल में रहना पड़ा था। इतना कहने के बाद प्रताप जोर जोर से हाँफने लगा। उसने आस्तिक से कहा, मुझे बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पर आस्तिक ने भी कहा, तुम मुझे पूरी तरह कहानी बताओ, मैं तुम्हें पानी जरूर दूंगा। मैं एक हफ्ते तक जेल में सड़ता रहा, लेकिन मेरा परिवार भी कोई आम परिवार नहीं था, वो भी एक प्रतिष्ठित और शहर का नामी परिवार था। उन्होंने अपने कुछ सोर्स बनाए हुए थे और उनकी मदद से ही मैं जेल से बाहर आया। मैं घर पर वापस आ गया था, लेकिन घर वालों की नज़रों में अब मैं वैसा इंसान नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। अब वो लोग मुझसे नफरत करने लगे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने उनका नाम खराब करने के घर से भी निकाल दिया था। इन्हीं सब वजह से सीमा के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वो और बढ़ती गई, और जितना मुझे अपमानित होना पड़ता उतनी ही मेरी नफरत और बढ़ जाती। मेरे पिताजी ने मुझे दूसरे शहर में भेज दिया, मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की थी, लेकिन इस वजह से मेरे दिल में सीमा के लिए नफरत कम नहीं हुई। मैं हमेशा से सोचता था कि सीमा के साथ कुछ ऐसा करूंगा जो मेरी नफरत की आग को एकदम से ठंडा कर दे। मैंने दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहां पर एक लॉयर बन गया, पर मैंने उस समय सिर्फ अच्छे केस ही लिए ताकि मेरे ऊपर जो बदनामी का धब्बा है वो मेरे माथे से हट जाए। एक रिस्पेक्टेड लॉयर बनकर जब मैं अपने शहर वापस आया तो धीरे धीरे मेरी वो प्रतिष्ठा मुझे वापस मिलने लगी थी जो उस सीमा की वजह से खराब हो गई थी। मेरे पिताजी और परिवार ने भी मुझे अपना लिया था। वहीं पर मेरे पिताजी की पार्टी में शामिल हुए कुछ लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई। वो भी मेरी ही तरह इंसान की शक्ल में भेड़िए थे। लड़कियां, शराब, मौज मस्ती, ये सब शौक वो भी करते हैं, पर दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करते थे। एक रात हम पांचों एक बार में बैठे मस्ती करने के लिए। वहां पर आंखों के सामने सीमा को देखकर मुझे तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो कॉलेज में बिंदास होकर घूमा करती थी। आज उसकी इतनी बुरी हालत हो रखी है कि उसे बार में नाचना पड़ रहा था। मैं देख पा रहा था वो कैसे अपने बदन को हिला हिला कर नाच रही थी, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल में पहले वाला एहसास नहीं जागा, बल्कि वो नफरत फिर से सामने आ गई जो मैंने बहुत मुश्किल से अंदर छुपा के रखी हुई थी। मैंने सीमा के बारे में फिर से पता करना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि सीमा की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे हैं। कॉलेज के दिनों में जब मैंने सीमा को जाना था तब तो मुझे इतना ही पता था कि उसकी फैमिली भी अच्छी खासी पैसे वाले घर से है, तो उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? मैंने इसके बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे सामने सीमा जो थी वो पैसों के लिए मोहताज थी। फिर मैंने और ज़्यादा जानकारी हासिल की, तब पता चला उसकी शादी भी किसी अच्छे इंसान से ही हुई थी। पर उसका पति कहाँ है मुझे ये जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही मुझे उसके बच्चों की डिटेल्स के बारे में पता करना था। मुझे सिर्फ सीमा से मतलब था। मुझे उसकी हालत पर तरस नहीं बल्कि खुशी हो रही थी। एक समय में जब उसके पास सब कुछ था तो वो बहुत अकड़ कर चला करती थी। उसकी वही अकड़ तो मुझे तोड़नी थी। मैंने अपने साथियों से कहा और उन्होंने सीमा का रेप कर दिया। इस आखिरी शब्द के साथ आस्तिक के सब्र का बांध और सुनने की शक्ति का बांध दोनों टूट गया। वो अपनी जगह से उठता है और प्रताप के ऊपर एक डंडे से वार करने लगता है। वो गुस्से में जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तेरी वजह से कमीने, तेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरी वजह से उसके बच्चे सड़क पर आ गए, तेरी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। प्रताप तो वैसे ही अधमरी हालत में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मरी हुई आवाज में कुछ कहते हुए कहा, उसने आत्महत्या नहीं। पर इसके आगे के शब्द ना तो वो बोल सका और ना ही किसी ने ये शब्द सुने, क्योंकि अब तक वो मर चुका था। पर आस्तिक गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो अभी भी प्रताप के मरे हुए उस शरीर पर डंडों की बारिश किए जा रहा था। कुछ समय बाद जब आस्तिक ने शांत होकर उस मरे हुए शरीर को देखा तो अपने मन में उफन रहे उस गुस्से के सैलाब को शांत करने की कोशिश करता है। वो अपने आदमियों से कहता है, उठाकर फेंक दो उसे जंगल में। आस्तिक वापस उस खंडहर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है। वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसने अपनी लाल आंखों से अपने बीते कल को याद करते हुए कहा, मेरा एक शिकार आज मौत के घाट उतार गया। अब अगली बारी तुम्हारी है शारदा मेहरा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी मौत नहीं दूंगा जो तुम्हारे शरीर को एकदम से मार दे, बल्कि मैं तुम्हें वैसी मौत दूंगा जैसी मेरी माँ ने बर्दाश्त की है। तुम लोगों की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उन्होंने खुदकुशी को ज्यादा बेहतर ऑप्शन समझा। आस्तिक का मन अभी भी बेचैन था, उसे करार नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने गाड़ी घुमा के सीधे महल की तरफ का रुख किया। आस्तिक महल पहुंचकर सीधे अपने कमरे में जाता है और अरुणिमा को ढूंढने लगता है। अरुणिमा उसे नहीं मिल रही थी। उसका मन और बेचैन हो गया था। उसे इस वक्त अरुणिमा को अपनी आंखों के सामने चाहता था। वो वापस नीचे हॉल में आता है तो देखता है अरुणिमा अमृता ताई के साथ गार्डन से अंदर की तरफ आ रही है। आस्तिक उनके पास आता है और कहता है, आप लोग कहाँ गए थे? मैं ढूंढ रहा था। अमृता ताई कहती हैं, तुम हमें क्यों ढूंढ रहे थे? हम तो गार्डन में बैठे हुए थे, अब क्या हम गार्डन में भी नहीं बैठ सकते हैं क्या? आस्तिक ने अरुणिमा को देखा और फिर अमृता ताई को देखते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस घर में नजर नहीं आए ना, इसीलिए पूछ रहा था। उसके बाद आस्तिक अरुणिमा को देखकर कहता है, कमरे में आओ, कुछ बात करनी है।